आप हैं SBS हिंदी के साथ।
दोस्तों, पिछले हफ्ते खबर आई थी कि सरकार ने गोल्ड कोस्ट और पर्थ को रीजनल इलाके में शामिल कर दिया है। इसका अर्थ ये होगा कि 25,000 स्थान जो वीज़ा के लिए अलग से रीजनल इलाकों के लिए घोषित किए गए हैं, उनमें ये जगह भी शामिल हो जाएंगी। लेकिन इस पूरे पहलू का एक तकनीकी पक्ष भी है। रीजनल एरिया और रीजनल सेंटर दो अलग अलग कैटेगरीज बनाई गई हैं। सरकार ने घोषणा की है कि अब ऑस्ट्रेलिया में माइग्रेशन पर्पस से तीन तरह के इलाके होंगे। पहला सिडनी, मेलबर्न और ब्रिस्बेन, जो तीन बड़े शहर हैं। इसके बाद रीजनल सेंटर्स और सिटीज़, और तीसरी कैटेगरी होगी रीजनल एरियाज़ की। ये तीनों अलग अलग कैटेगरीज होंगी और इन तीनों में माइग्रेशन पर्पस से कुछ फ़र्क भी होगा। आइए, इन बारीकियों को समझने के लिए हम बात करते हैं मेलबर्न की माइग्रेशन एक्सपर्ट चमनप्रीत से। चमन, आपका स्वागत है। ये बताइए, जैसा कि खबर आ चुकी है कि गोल्ड कोस्ट और पर्थ दोनों अब रीजनल एरियाज़ में शामिल हैं, सबसे पहले तो ये बताइए कि इसका क्या मतलब है?
विवेक, जैसा कि आपने देखा होगा, रीजनल एरिया की डेफिनेशन थी जो मेजर सिटीज थी छोड़ के उनको बाकी सब एरियाज को रीजनल एरिया कहते थे, जिसमें कि पर्थ, गोल्ड कोस्ट, एडलेड सारे शामिल थे। अभी जब से ये नया स्ट्रक्चर और जो नई वीजा की अनाउंसमेंट हुई है, उन्होंने दो पार्ट में इसको ब्रेक कर दिया है। सो एक मेजर रीजनल सेंटर कहलाता है और एक रीजनल एरिया कहलाता है। तो जो सिटीज एंड मेजर रीजनल सेंटर हैं, उसमें पर्थ, एडलेड, गोल्ड कोस्ट, सनशाइन कोस्ट, न्यूकासल, जिलोंग, आपका होबार्ट, वोलंगोंग, ये सारा इंक्लूड हो गया है। और उसके और जो आपकी मेजर सिटीज है वो तो हैं ही सिडनी, ब्रिस्बेन, मेलबर्न, इनको छोड़ के जो एरियाज हैं वो रीजनल एरियाज हैं।
आपने कहा कि दो अलग अलग हिस्सों में बांट दिया गया है।
जी बिल्कुल,
रीजनल एरियाज ही दो तरह के होंगे अब।
जी बिल्कुल, एक रीजनल सेंटर कहलाएगा और एक रीजनल एरिया कहलाएगा। तो इसमें अब डिफरेंस क्या होगा? डिफरेंस दोनों में जो सामान्यता होगी वो तो यही होगी कि जो रीजनल की हमारी 25,000 सीटें एलोकेट की गई थी वो इन दोनों में बांटी जाएंगी। प्रायोरिटी प्रोसेसिंग दोनों ही रीजनल एरियाज और रीजनल सेंटर्स को मिलेंगे। दोनों जो रीजनल ऑक्यूपेशन लिस्ट है, जिसे हम ROL भी कहते हैं, वो दोनों एरियाज और सेंटर्स दोनों एक्सेस कर पाएंगे। अब एक जो माइनर सा डिफरेंस है वो है कि जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स मेजर रीजनल सेंटर्स में पढ़ रहे हैं, जैसे कि आपका पर्थ, एडलेड, गोल्ड कोस्ट, सनशाइन कोस्ट, न्यूकासल, वोलंगोंग, जिलोंग, होबार्ट, ये सारे जो एरिया हैं, इनमें जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं रीजनल यूनिवर्सिटीज में, उनको वन एक्स्ट्रा ईयर ऑफ पोस्ट स्टडी वर्क वीजा, जो हमारी TR होती है, वो एक साल अधिक मिलेगी। और जो बच्चे रीजनल एरियाज में पढ़ रहे हैं उन्हें दो साल अधिक पोस्ट स्टडी वर्क वीजा मिलेगा,
यानी 4 साल।
बिल्कुल।
ओके, तो ये तो बहुत अच्छी बात है।
जी, ये बहुत खुशखबरी है। और जैसा कि आपने सुना ही होगा, बिफोर वी मूव ऑन, एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगी, जो रीजनल एरियाज हैं उनमें डामा की प्रायोरिटी निगोसिएशन या डामा की ऑप्शन भी होगी फ्यूचर में, तो ये मैं ऐड करना चाहती थी। तो जैसा कि आपने सुना होगा कि पर्थ और गोल्ड कोस्ट काफी डिसअपॉइंटेड थे जब उन दोनों एरियाज को रीजनल में इंक्लूड नहीं किया गया था, क्योंकि जो हमारी वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट है उन्होंने कुछ दिन पहले अनाउंसमेंट की थी, अगर हमने अराउंड 17th of October के आसपास, जिसमें उन्होंने कुछ चेंजेस अनाउंस किए थे अपने ग्रेजुएट स्ट्रीम में। पहले जो स्टेट नॉमिनेशन की स्ट्रीम थी पर्थ और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की, वो सिर्फ हायर एजुकेशन के लिए एक्सेसिबल थी, और जो अनाउंसमेंट आई थी उसके हिसाब से जो वेट सेक्टर हैं, जो आपके सर्टिफिकेट्स जिसमें इंक्लूड होते हैं या एलिकॉस है, वो सारे जो बच्चे वहाँ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में वो सब वो कोर्सेज भी पढ़ रहे थे, वो भी स्टेट नॉमिनेशन के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, ऐसी घोषणा हुई थी। और ये घोषणा, ये जो चेंजेस हैं, ये आपके दिसंबर से लागू होंगे, दिसंबर 2019 से। और एक उसके अलोंग घोषणा थी कि जो वर्क एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में, वो अभी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए 12 मंथ्स वर्क एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है प्लस अ जॉब ऑफर फॉर अनदर 12 मंथ्स, जिसे वो रिड्यूस करके ग्रेजुएट्स की रिक्वायरमेंट 6 महीने की वर्क एक्सपीरियंस की कर दे रहे थे या फिर 6 महीने का एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, दोनों नहीं. तो दिस वॉज अ वेरी वेरी वेलकम मूव, जो लोगों को लग रहा था कि पर्थ की स्टेट नॉमिनेशन है वो अचीवेबल हो जाएगी. लेकिन अगर अगर पर्थ और गोल्ड कोस्ट नॉट सो मच, बट पर्थ स्पेसिफिकली अगर इंक्लूड नहीं होता तो इस चीज को अचीव करना काफी मुश्किल हो जाता, या ऐसा कह ले कि उसका कोई फायदा नहीं होता. तो ये काफी वेलकम न्यूज है सबके लिए.
तो एक ये तो बात हुई कि स्टूडेंट्स को क्या क्या फायदे हो रहे हैं इस बात के, उसके अलावा जो स्किल्ड माइग्रेंट्स हैं, होपफुल हैं, जो स्किल्ड माइग्रेशन के तहत, उनको क्या लाभ होंगे?
विवेक, अगर हम पर्थ की जो लिस्ट है जिस देखें और अभी जो लिस्ट है उसे देखें, या जो क्वींसलैंड की लिस्ट है उस पे काफी वैरायटी ऑफ ऑक्यूपेशंस अवेलेबल हैं. ऐसी कई सारी ऑक्यूपेशंस जो कई दूसरे स्टेट्स में नहीं है. सो इससे फायदा उनके लिए ये होगा कि ये जो वीजाज है वो प्रायोरिटी प्रोसेसिंग में जाएंगे, तो जो होपफुल्स हैं उनके लिए चांसेस बढ़ेंगे. सो इट्स अ वेरी सिस्टमैटिक प्रोसेस जो इन्होंने प्लान किया है कि इट्स अ रिक्वायरमेंट और एंड इट्स अ पुश इन लाइन विद द गवर्नमेंट स्टैंस कि जो माइग्रेंट्स आ रहे हैं उनकी एंट्री ही उन स्टेट्स में हो, एंड देन इन द लॉन्गर रन उनको वो स्टेट नॉमिनेशन मिलने में भी ईजी हो. तो वहां पढ़ें, वहां काम करें, वहां पे अपनी पीआर मिलने में ईजी हो उन्हें.
लेकिन चमन, क्या आपको लगता नहीं है कि ये एक कॉन्ट्राडिक्शन है सरकार की उस पॉलिसी के तहत जो रीजनल एरियाज में, उन एरियाज में माइग्रेंट्स को भेजा जाए जहां लोगों की ज़रूरत है, जहां डेवलपमेंट की ज़रूरत है? तो पर्थ और गोल्ड कोस्ट जैसे जो बहुत बड़े शहर हैं, अब अगर उनको भी आप रीजनल सेंटर बना देंगे तो ज़्यादातर लोग यहां जाना चाहेंगे क्योंकि ये बहुत ही एस्टेब्लिश्ड जगह हैं. तो वही बात फिर आ जाएगी कि उन जगहों पर कौन जाएगा, उन छोटी छोटी जगहों की बात जो हो रही थी.
विवेक, आपसे बिल्कुल सहमत हूँ, बट ये बहुत ही मुझे लगता है स्मार्ट मूव है सरकार का, जो इन्हें स्प्लिट कर दिया गया है, जो रीजनल सेंटर और रीजनल एरिया बना दिया गया है. रीजनल एरिया में जाने से काफी लोगों को अट्रैक्शन है कि वहाँ डामा की पॉसिबिलिटी बनती है, वहाँ एक एक्स्ट्रा साल काम करने को मिलेगा, तो 1 year वर्थ ऑफ वीजा एक्स्ट्रा है, विच इज गुड इनफ. और मुझे लगता है विवेक की अभी उन एरियाज की प्रोबेबली कैपेसिटी भी उतनी नहीं है कि वो इतने माइग्रेंट रश को हैंडल कर पाए. सो इट्स अ वेरी सिस्टमैटिक फ्लो जो कि लगता, जो जैसा अनुमान लगाया जा सकता है कि अभी पुश हो रहा है ज्यादा लोगों को इन सेंटर्स में, रीजनल सेंटर्स में भेजने के लिए, एंड धीरे धीरे वो ट्रिकल डाउन होगा हमारे रीजनल एरियाज में जब वो थोड़े और डेवलप्ड और उस इनटेक या उस इनफ्लक्स को हैंडल करने लायक हो जाएंगे तब.
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद ये जानकारी देने के लिए चमनप्रीत.
धन्यवाद विवेक.
आपका समुदाय, आपकी बातें, SBS हिंदी. लाइक करें, शेयर करें या कमेंट करें. SBS हिंदी को फेसबुक पर फॉलो करें.